ओम शांति। आज हम सभी बाप दादा के मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे 25 दिसंबर 1969 की अव्यक्त वाणी पूरी एकाग्रता के साथ सुनेंगे। इस वाणी का शीर्षक है अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो। अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो। बाप दादा को कहां बुलाया है और किस लिए? बाबा पूछ रहे हैं, अभी कहां बैठे हो? मधुबन में तो हो, लेकिन मधुबन में भी कहां बाप आए हैं? फुलवारी में बैठे हो या महफिल में? बाप दादा रूहानी रूहों को देख रहे हैं और साथ साथ हर एक फूल से निकले हुए रूह की खुशबुएं भी ले रहे हैं। जैसे वह लोग फूलों से एसेंस निकालते हैं, उनको रूह कहते हैं। उनकी खुशबू बहुत अच्छी और मीठी होती है। तो यहाँ मधुबन में रहते भी आज रूहानी दुनिया का सैर कर रहे हैं। आप सभी को भी रूहानी रूप में रह करके हर कर्म करना है, तब सर्विस में और कर्म में रौनक आएगी। अभी नवीनता चाहते हो ना? वह जैसे चल रहे हैं उसमें संतुष्ट हो। नई रौनक बाबा कहते तब आएगी जब हर कर्म में, हर संकल्प में, वाणी में रूहानियत होगी। बाबा पूछते हैं कि रूहानियत कैसे आएगी, इसके लिए क्या करना है जो रूहानियत सदा कायम रहे, क्या बदलना है? बाबा कहते हर एक ने भिन्न भिन्न बातें सुनाई। यह तो है मुख्य बातें जो सभी को पक्की ही है। बाबा पूछते परंतु रूहानियत न रहने का कारण क्या है? वफादार फरमान बरदार क्यों नहीं बन पाते हैं? इसकी बात है संबंध की कमी। बाबा पूछ रहे हैं कि संबंध में कमी भी क्यों पड़ती है? निश्चय बुद्धि का तिलक तो सभी को लगा हुआ है। यह प्रश्न है कि रूहानियत सदा कायम क्यों नहीं रहती है? बाबा कहते रूहानियत कायम न रहने का कारण यह है कि अपने को और दूसरों को, जिनके सर्विस के लिए हम निमित्त हैं, उनको बाप दादा की अमानत समझकर चलना। जितना अपने को और दूसरों को बाबा कहते अमानत समझेंगे तो रूहानियत आएगी। अमानत ना समझने से कुछ कमी पड़ जाती है। मन के संकल्प जो करते हैं वह भी ऐसे समझ करके करें कि यह मन भी एक अमानत है। इस अमानत में ख्यानत नहीं डालनी है। दूसरे शब्दों में बाबा कहते आप औरों को ट्रस्टी कहकर समझाते हो ना, उन्हों को ट्रस्टी कहते हो, लेकिन अपने मन और तन को और जो कुछ भी निमित रूप में मिला है, चाहे जिज्ञासु है, सेंटर है व स्कूल, कोई भी वस्तु है, लेकिन अमानत मात्र है। अमानत समझने से इतना ही अनासक्त होंगे, बुद्धि नहीं जाएगी। अनासक्त होने से ही रूहानियत आवेगी। अनासक्त होने से ही बाबा कहते रूहानियत आवेगी। इतने तक अपने को क्षमा पर मिटाना है। मिटाना तो है, लेकिन कहाँ तक? यह मेरे संस्कार है, यह मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाए, मेरे संस्कार फिर कहाँ से आए? मेरे संस्कारों के कारण ही यह बातें होती हैं। इतने तक मिटना है जो कि नेचर भी बदल जाए। बाबा कहते इतने तक मिटना है जो कि नेचर भी बदल जाए। जब हर एक की नेचर बदले, तब आप लोगों के अव्यक्ति पिक्चर्स बनेंगे। जब नेचर बदले, तब हमारे अव्यक्त पिक्चर्स बनेंगे। बाबा कहते संगम युग की संपूर्ण स्टेज की पिक्चर क्या है? फरिश्ते में क्या विशेषता होती है? एक तो बिल्कुल हल्कापन होता है, हल्कापन होने के कारण जैसी भी परिस्थिति हो, वैसी अपनी स्थिति बना सकेंगे। जो भारी होते हैं, वह कैसी भी परिस्थिति में अपने को सेट नहीं कर सकेंगे। तो फरिश्तेपन की मुख्य विशेषता हुई कि वह सभी बातों में हल्के होंगे, संकल्पों में भी हल्के, वाणी में भी हल्के, और कर्म करने में भी हल्के, और संबंध में भी हल्के रहेंगे। इन चार बातों में हल्कापन है तो बाबा कहते फरिश्ते की अवस्था है, संकल्प, वाणी, कर्म, संबंध। बाबा कहते हैं अब देखना है कहाँ तक इन चार बातों में हल्कापन है। जो हल्के होंगे वह एक सेकंड में कोई भी आत्मा के संस्कारों को परख लेंगे, और जो भी परिस्थिति सामने आएगी उनको एक सेकंड में निर्णय कर सकेंगे। बाबा कहते यह है फरिश्तेपन की परख। जब यह सभी गुण हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे, तो समझना अब संपूर्ण स्टेज नजदीक है। साकार रूप की संपूर्ण स्टेज किन बातों में नजर आती थी? मुख्य बात तो अपने संपूर्ण स्टेज की आप ही परख करनी है इन बातों से। इस ग्रुप का बाबा पूछते मुख्य गुण कौन सा है? वह ग्रुप था यज्ञ स्नेही, और यह ग्रुप है यज्ञ सहयोगी। यह सहयोगी में तो सभी पास है, बाकी क्या करना है? ऐसी भी स्थिति होगी जो किसके मन में जो संकल्प उठेगा, वह आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा। बोलने सुनने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यह तब होगा जब औरों के संकल्पों को रीट करने के लिए अपने संकल्पों के ऊपर पावरफुल ब्रेक होगी। ब्रेक पावरफुल हो, अगर अपने संकल्पों को समेट न सकेंगे तो दूसरों के संकल्पों को समझ नहीं सकेंगे। अब कहते इसलिए सुनाया था कि संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो। जितनी जितनी संकल्पों को समेटने की शक्ति होगी उतना उतना औरों के संकल्पों को समझने की भी शक्ति होगी। अपने संकल्पों के विस्तार में जाने के कारण अपने को ही नहीं समझ सकते हो तो दूसरों को क्या समझेंगे। इसलिए यह भी स्टेज नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार आती रहेगी। यह भी संपूर्ण स्टेज की तरह है। कहां तक संपूर्ण स्टेज के नजदीक आए हैं उनकी परख बाबा कहते इन बातों से अपने आप ही करनी है। यह ऑल राउंडर ग्रुप है। ऑल राउंडर का बाबा पूछते हैं लक्ष्य क्या होता है। लक्षण है लेकिन जो लक्ष्य रखा है वह कुछ और आगे का रखना चाहिए। अब तक जो प्रैक्टिकल में है उस हिसाब से कौन से राज्य गिने जाएंगे। अभी के सर्विस के साक्षात्कार प्रमाण कौन से राज्य बनेंगे। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ से पद तो स्पष्ट हो ही जाता है। भला सूर्यवंशी तो है लेकिन एक होते हैं विश्व के राजे, तो विश्व महाराजन के साथ अपने राज्य के राज्य भी होते हैं। अब बताओ आप कौन से राज्य हो, शुरू में कौन आएंगे। बाबा पूछ रहे हैं शुरू में कौन आएंगे। विश्व के महाराजन बनना और विश्व महाराजन के नजदीक संबंधी बनना इसके लिए कौन सा साधन होता है। विश्व का कल्याण तो हो ही जाएगा लेकिन विश्व के महाराजन जो बनने वाले हैं उन्हों की अभी बाबा पूछते हैं निशानी क्या होगी। यह भी ब्राह्मणों का विश्व है अर्थात छोटा सा संसार है, तो जो विश्व महाराजन बनते हैं उन्हों को ब्राह्मण कुल की हर आत्मा के साथ संबंध रखना होगा। जो यहाँ इस छोटे से परिवार सर्व के संबंध में आएंगे वे वहाँ विश्व के महाराजन बनेंगे। जो यहाँ इस छोटे से परिवार सर्व के संबंध में आएंगे वे वहाँ विश्व के महाराजन बनेंगे। बाबा पूछ रहे हैं अब बताओ कौन से राजे बनेंगे। एक होते हैं जो स्वयं तख्त पर बैठेंगे और एक फिर ऐसे भी हैं जो तख्त नशीन बनने वालों के नजदीक सहयोगी होंगे। नजदीक सहयोगी भी होना है तो उसके लिए भी अब क्या करना पड़ेगा। जो पूरा दैवी परिवार है उन सर्व आत्माओं के किसी न किसी प्रकार से सहयोगी बनना पड़ेगा। बाबा कहते हैं जो पूरा दैवी परिवार है उन सर्व आत्माओं के किसी न किसी प्रकार से सहयोगी बनना पड़ेगा। एक होता है सारे कुल के सर्विस के निमित्त बनना और दूसरा होता है सिर्फ निमित्त बनना। लेकिन किसी न किसी प्रकार से सर्व के सहयोगी बनना। ऐसे ही फिर वहाँ उनके नजदीक के सहयोगी होंगे। तो अब बाबा कहते अपने आप को देखो, अब अपने आप को देखो, विष्णु महाराजन बनेंगे ना। नंबर वार विष्णु महाराजन कौन से बनते हैं? बाबा कहते वह भी दिन प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखते जाएंगे। ऐसे नहीं कि अभी नहीं बन सकते हैं, अभी भी जंप दे सकते हैं। मेकअप करने का अभी समय है, बाबा कहते लेकिन थोड़ा अब समय है, समय थोड़ा है, मेहनत विशेष करनी पड़ेगी, लेकिन मेकअप कर सकते हो। थोड़ा समय है, मेहनत विशेष करनी पड़ेगी, लेकिन मेकअप कर सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि विश्व के महाराजन के संस्कार क्या होंगे? आज बाप दादा विश्व के महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उसके संस्कार क्या होंगे? जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही, या तो प्रैक्टिकल में देखा ना, ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे, तब इतने जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। तो यहाँ भी अपने को देखो कि मुझ आत्मा के ऊपर कितने स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है। वह छिप नहीं सकेंगे। जितने स्नेह के पुष्प उतने द्वापर में पूजा के पुष्प चढ़ेंगे। कहाँ कहाँ कोई पुष्प चढ़ाने लिए कभी कभी जाते हैं, और कहाँ तो हर रोज और बहुत पुष्पों की वर्षा होती है। मालूम है इसका कारण क्या है? तो यही लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने। स्नेह कैसे मिलता है? बाबा पूछते हैं। एक एक को अपना सहयोग देंगे तो स्नेह मिलेगा, और जितने के यहाँ सहयोगी बनेंगे उतने के स्नेह के पात्र बनेंगे। और ऐसा ही फिर विश्व के महाराजन बनेंगे, इसलिए लक्ष्य बड़ा रखो। आज एक भक्ति मार्ग का चित्र बाबा कहते याद आ रहा है। आज देख भी रहे थे तो मुस्कुरा भी रहे थे, देख रहे थे, अंगुली देने वाले तो है ना, अंगुली दी भी है व देनी है। बाबा पूछते कहाँ तक अंगुली पहुंची है? अगर अंगुली देनी है तो इसका मतलब है जहाँ तक अंगुली पहुंची है वहाँ तक नहीं दी है, पहाड़ उठा नहीं है। बाबा पूछते हैं क्यों, इतना भारी है क्या? इतनों की अंगुली भी मिल गई है फिर भी पहाड़ क्यों नहीं उठता? कल्प पहले का जो यादगार है वह सफल तब हुआ है जब सभी का संगठित रूप में बल मिला है, इसलिए थोड़ा उठता है फिर बैठ जाता है। हर एक अपनी अपनी अंगुली लगा रहे हैं बाबा कहते, परंतु अब आवश्यकता है संगठित रूप में। स्वयं की उंगली दी है लेकिन अब संगठन में शक्ति तब भरेगी जब वह बल आएगा। अब शक्ति दल की प्रत्यक्षता होनी है। सभी फूल तो बने हैं लेकिन बाबा कहते अब गुलदस्ते में संगठित रूप में आना है। अभी कोई पुष्प कहाँ कहाँ अपनी लात दिखा रहे हैं, कोई अपनी खुशबू दे रहा है, कोई अपना रूप दिखा रहा है। लेकिन रूप रंग खुशबू जब सब प्रकार के गुलदस्ते के रूप में आ जाएंगे, रूप रंग खुशबू जब सब प्रकार के गुलदस्ते के रूप में आ जाएंगे, तब दुनिया के आगे प्रत्यक्ष होंगे। बाबा कहते अब ऐसा प्लान बनाओ जो संगठित रूप में कोई नवीनता दुनिया के आगे दिखाओ। एक एक अलग होने के कारण मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन संगठन में मेहनत कम सफलता जास्ती होगी। जब संगम युग के संगठन को सफल बनाएंगे तब सर्विस की सफलता होगी। योग्यताएं सभी हैं, लेकिन योजना तक रह जाती है। अब अपनी योग्यताओं से औरों को भी बाप के समीप लाने योग्य बनाओ। यह जो ग्रुप है, यह है आत्माओं के संबंध जुड़वाने की नींव डालने वाला। जैसी नींव डालेंगे वैसे ही उन्हों की आगे जीवन बनेगी। बाबा कहते सभी बातों में जितना खुद मजबूत होंगे उतना अनेकों की नींव मजबूत डाल सकेंगे। जितनी अपने में सर्व क्वालिफिकेशन होंगी ऐसे ही क्वालिटी आएगी। अगर अपने में क्वालिफिकेशन कम है तो क्वालिटी भी कम आएगी। इसलिए ऐसे समझो कि हम सभी नींव डालने वाले हैं। अपनी क्वालिफिकेशन से ही क्वालिटी आएगी। आप समान तब बना सकेंगे जब बाप दादा के गुणों की समानता अपने में लाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, ओम शांति।